हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उसकी सिसकियाँ निकलने लगी, आंखों से आंसू आने लगे। वो अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, बहुत रिक्वेस्ट करते हुए रियाज से कहती है, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे पता है, एक बार आप मुझे अपने घर ले जाएंगे तो उसके बाद आप मुझे सजा देंगे। मैं आपके साथ एक घर के मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं आपके साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं बता सकती हूँ। मैं आपके सामने रहम की भीख मांगती हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। रियाज इनायत की सारी बातें अपने दोनों हाथ बांधे हुए सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इनायत के आंसू इतने तेज बहने लगे थी कि उसकी सिसकियों के साथ हिचकियां भी शुरू हो गई थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसे खुद ही नहीं पता था कि वो इतनी हिम्मत के साथ रियाज से ये सब कैसे कह गई, लेकिन फिर भी उसने कह दिया। और अब उसे पता था कि रियाज क्या कहेगा, और रियाज ने वही कहा। मेरा जवाब है नहीं, उसने सख्ती से कहा और स्टडी रूम से बाहर जाने के लिए उसके पास से गुजर गया। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि कुछ आवाज आई। वो पलटकर नीचे देखता है तो इनायत अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठी हुई थी और रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम दिखाइए, मुझे कैद मत कीजिए, मैं बहुत जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम कभी भी मुझसे आज़ाद नहीं हो सकती हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये कहते वक्त रियाज के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ है ही नहीं। वो बस इनायत को चाहता है और इसके अलावा उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन क्यों, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताइए मुझे, मेरी गलती क्या है? क्या किया है मैंने ऐसा जिसकी वजह से आप मुझे ये सजा दे रहे हैं? मैंने कभी आपसे नहीं कहा था कि मुझे आपसे शादी करनी है। वो आप थे जिन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी की है और उसके बाद मुझे कैद में रख लिया है। मुझे आज़ाद होना है, मुझे आज़ादी की जिंदगी चाहिए, मुझे ये घुटन भरी जिंदगी नहीं चाहिए। इनायत के हाथ कांप गए थे और उसने रोते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा रखा था। उसे ऐसा देखकर रियाज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो तेज कदमों से इनायत के पास आता है और उसकी बाजू को पकड़कर उसे एक झटके से खड़ा करता है। ये सब तुम्हें तब ख्याल क्यों नहीं आया जब मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ रिश्ता रख रही थी और मुझे धोखा देने के बारे में सोचा था? तुम्हें हजारों बार समझाया था कि मुझे धोखा मत देना, मुझे हर चीज मंजूर है, लेकिन धोखा नहीं। फिर तुमने कैसे उम्मीद की कि इतने बड़े धोखे के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा? इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस बात को अपना लो, क्योंकि मैं बताने पर आया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसने धीरे से इनायत को सीधा खड़ा किया और उसके बालों को सही किया। उसने इनायत के गालों पर हाथ रखकर उसके आंसुओं को पोछा और फिर उससे एक कदम पीछे हटकर अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर उसे देखने लगा। इनायत को पहले से ही पता था कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो एक आखिरी कोशिश जरूर करना चाहती थी। उसने अपने पैरों पर गिरकर रियाज से माफ़ी मांगी और उसे खुद को छोड़ देने के लिए भीख भी मांगी, पर उसे पता था कि रियाज वही करेगा जो उसने कहा है। रियाज धीरे से इनायत के कानों के पास झुकता है और हल्की आवाज में कहता है, आज रात के लिए तैयार रहना, और ये कहने के साथ ही वो उस कमरे से निकल जाता है। जैसे ही रियाज स्टडी रूम से बाहर निकलता है, वैसे ही इनायत पास की टेबल पर रखा हुआ फूलदान उठाती है और उसे दीवार पर जोर से दे मारती है। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और दहाड़े लेते हुए वो रोने लगती है। उसने स्टडी रूम में रखा हुआ हर सामान उठाकर फेंकना और पटकना शुरू कर दिया था। अंत में थक कर हार कर निराशा के साथ वो वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसका चेहरा उदासी से मुरझा रहा था। अब उसके जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं थी। आज उसकी रुखसती हो जाएगी और आज रात के बाद उसे शायद कभी मौका नहीं मिलेगा अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का। वो उसकी हवेली में उसके साथ रहेगी। उसके साथ ना उसकी माँ होगी, ना ही उसका परिवार होगा और ना ही कोई अपना होगा। वो वहाँ पर उसे अपने हिसाब से सजा देगा। इनायत के आंसू बहते जा रहे थे और वो अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाई जा रही थी। एक जिंदा लाश की तरह जैसे ही वो अपने कमरे के पास पहुंचती है, वैसे ही मुराद उसके सामने आ जाता है। वो इनायत को देखकर हैरानी से कहता है, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? इनायत जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? मैं अंधा हूँ क्या? क्या मुझे नजर नहीं आ रहा? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्या हुआ बताओ मुझे? मुराद ने थोड़ा सख्ती से पूछा, लेकिन इनायत अपना दर्द अब किसी और को नहीं बताना चाहती थी। वैसे भी मुराद उसकी वजह से पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका है, पर उसने जल्दी से ना में सर हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं हुआ है। भाई ने तुमसे कुछ कहा? मुराद ने सीधे तौर पर सवाल किया था, क्योंकि इन दिनों इनायत और रियाज के बीच क्या चल रहा था, इसकी हल्की हल्की भनक तो उसे भी थी ही। इनायत अपने टूटे हुए दिल और मुरझाई हुई आवाज के साथ कहती है, वो मुझे कभी भी अपनी कैद से आज़ाद नहीं होने देगा मुराद। क्या तुम मुझे बचा सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो प्लीज मुझे बचा लो, मुझे ये रुख्सती नहीं चाहिए। इनायत के आंसू बहने लगे थे और उसके आंसू देखकर मुराद का दिल भी पिघल जाता है। वो कस के अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो और ये बताओ कि क्या तुमने भाई से बात की उस बारे में जो मैंने तुमसे कहा था? नहीं, मैंने नहीं किया, उसने रोते हुए कहा। तो मुराद हैरानी से कहता है, क्यों, क्यों नहीं कहा? अरे तुम्हें एक बार भाई से इस बारे में बात तो करनी चाहिए थी ना? ठीक उस वजह जिस वजह से मैं बात नहीं कर पाई, इनायत ने भी सुभकते हुए कहा, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुराद कुछ सोचता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ और अपने कमरे में जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ, प्लीज कोशिश करो नॉर्मल रहने की। अगर किसी ने भी तुम्हें इस तरीके से परेशान देख लिया तो बात फैल जाएगी, और अगर बात फैल गई तो बात बाहर आने में समय नहीं लगेगा। इनायत कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो कैसे इस वक्त खुद को शांत रख सकती थी? वो धीरे से अपने कमरे में जाती है तो देखती है जन्नत और अमल पहले से ही उसके कमरे में मौजूद हैं, और उनके पास मेकअप का सारा सामान है और साथ ही कुछ गहने भी। इसका मतलब वो दोनों उसे तैयार करने आई हैं।